पेश हैं आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलिया भर में अनिवार्य टीकाकरण के खिलाफ प्रदर्शनों की तैयारी। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा, भारत जल्द होगा सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर। और ऑस्ट्रेलिया ओपन ने साफ किया कि टीकाकरण सभी खिलाड़ियों के लिए होगा अनिवार्य। और अब खबरें विस्तार से। विक्टोरिया ने आज स्थानीय रूप से अधिग्रहित 1,166 नए कोरोना वायरस के मामले और 5 मृत्यु दर्ज की हैं। विक्टोरिया 90% पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य से अब कुछ ही दूर है। राज्य में 89% 12 साल से अधिक उम्र के निवासियों को पूर्ण टीकाकरण प्राप्त हो चुका है। राज्य में एक दिन में सक्रिय मामलों में भी एक बड़ी गिरावट देखी गई है। विक्टोरिया में बीते दिन 13,813 सक्रिय मामले थे, वहीं आज ये आंकड़ा 9,581 का हो गया है। इसी बीच न्यू साउथ वेल्स में आज 182 नए संक्रमण सामने आए हैं। राज्य में 94.3% 16 साल से अधिक उम्र के निवासियों को टीके की एक खुराक और 91.7% लोगों को पूर्ण टीका प्राप्त हो चुका है। फांसीवाद विरोधियों ने देश भर में सुयोजित स्वतंत्रता रैलियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। उनका ऐसा मानना है कि ये रैलियां कट्टर दक्षिणपंथी प्रभाव में संयोजित की जा रही हैं। एक इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, होबार्ट और अन्य कई क्षेत्रीय जगहों पर आज यानी शनिवार के लिए अनिवार्य टीकाकरण के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन आयोजित होने थे। ये तब सामने आता है जब मेलबर्न में पिछले विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार के प्रस्तावित महामारी विधेयक के विरुद्ध हिंसा की धमकियां आई थीं। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने कोविड रिकवर फंड से 91.5 मिलियन डॉलर की राशि राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन को बढ़ावा देने और इको टूरिज्म के लिए निर्धारित की है। कोषाध्यक्ष और पर्यावरण मंत्री मैट कीन का कहना है कि महामारी के बाद से अब इन उद्यानों में आने वाले लोगों की संख्या में भारी बढ़त देखी गई है और यह है कि इस राशि का इस्तेमाल पैदल चलने वालों के लिए रास्ते बनाने और मौजूदा व्यवस्था के विकास के लिए होगा। विलियम टायरल खोज मामले में पुलिस के हाथ एक नया सबूत लग सकता है। केंडल के पास जिस जगह पर नन्हे टायरल के अवशेषों की खोज जारी है, वहां नए सिरे से शुरू हुई जांच के 5वें दिन एक हल्के नीले रंग का कपड़ा मिला है, जिसे सिडनी आगे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। विलियम 7 साल पहले जब गुमशुदा हुए थे तब उनकी आयु 3 साल की थी। वे अपनी मुंह बोली दादी के बगीचे से स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में गायब हुए थे। पिछले 80 साल से द्वितीय विश्व युद्ध के समय के एक ऑस्ट्रेलियाई जंगी जहाज से मिले एक नाविक के शरीर की पहचान अब तक एक पहेली बनी हुई थी। अब डीएनए टेस्टिंग की मदद से तब 21 साल के रहे इस नाविक की पहचान थॉमस वेल्सबी क्लार्क के रूप में कर ली गई है। अब तक श्री क्लार्क को अनजान नाविक के नाम से जाना जाता था। उनका पार्थिव शरीर, जो एक लाइफ जैकेट और एक राफ्ट के साथ तट पर बह आया था, जर्मनी के युद्ध पोत के साथ हुई उस जंग के एक लौते अवशेष थे। ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर ली लीहैन वो आखिरी रिश्तेदार थी जो श्री क्लार्क को आमने सामने से जानती थी। उनका कहना है कि जिस तरह से श्री क्लार्क दुनिया से रुखसत हुए, उसने उनके मन पर हमेशा के लिए एक छाप छोड़ दी है।
So that's a very pleasurable thought, because I don't think anyone else is alive now who knew Tom sort of eye to eye.
उधर नॉर्दर्न टेरिटरी अब भी हाई अलर्ट पर है। राज्य में कोरोना जांच भी जारी है। टेरिटरी के अधिकारी अब भी निकट संपर्कों और सीवेज के पानी की जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री माइकल गनर का कहना है कि ये नतीजे तय करेंगे कि राज्य भर में अनिवार्य मास्क के नियम सोमवार 22 नवंबर की तय सीमा पर हटाए जाएंगे या नहीं।
This is a pretty good day. We are feeling a bit more confident, but we are not complacent. We are feeling better today about the chance of relaxing lockdown in Katherine and Robson River from Monday, but I want to flag with people now that does not mean we go straight from lockdown to no restrictions. The most likely scenario is stepping out of a lockdown into a lockout for a period. That means only people who are fully vaccinated can move about the community while we finish up the testing and tracing.
फेडरल लेबर का कहना है कि अगर वे अगले साल सत्ता में आती है तो सार्वजनिक प्रसारणकर्ता SBS और ABC के लिए फंडिंग बढ़ाएंगे ताकि प्रसारणकर्ताओं को वित्तीय निश्चितता मिल सके और देश में सांस्कृतिक विकास जारी रहे। फेडरल विपक्ष ने वादा किया है कि वे मौजूदा 3 साल की फंडिंग साइकिल को बढ़ाकर 5 साल का कर देंगे। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमरीकी भारतीय प्रशांत क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर कर्ट कैंपबेल का कहना है कि ऑकस पैक्ट खुले ढांचे की संस्था है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी देश इसका हिस्सा बनेंगे। इस समूह में फिलहाल अमरीका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया आपसी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से शामिल हैं। अगले साल 2022 में जापान इस समूह की वार्ता भी आयोजित करेगा। श्री कैंपबेल का कहना है कि ऑकस चीन के सैन्य सशक्तिकरण के जवाब में बनाया गया है। चीन के इस सैन्य सशक्तिकरण को दुनिया के सबसे बड़े सैन्य सशक्तिकरण में से एक माना जाता है। अमरीकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कुछ वक्त के लिए अपने अधिकार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को स्थानांतरित किए थे जब वे एक रूटीन कोलोनोस्कोपी के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इसके साथ ही सुश्री हैरिस अमरीकी राष्ट्रपति पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये स्थानांतरण 1 घंटा 25 मिनट लंबा रहा जब तक श्री बाइडेन बेहोश रहे। श्री बाइडेन आज 79 साल के हो गए हैं। अपने इलाज के बाद व्हाइट हाउस लौटते हुए उन्होंने कहा कि
They're going to release all the detail. I feel great. Nothing's changed. We're in great shape. And so, and I'm looking forward to celebrating my 58th birthday.
और अब खबरें भारत से। झांसी में आयोजित रक्षा पर्व के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही भारत के 90% रक्षा उपकरण स्वदेशी निर्मित होंगे। इस मौके पर श्री सिंह ने बताया कि भारत रक्षा उपकरण आयातक से निर्यातक बनने तक का सफर तय कर चुका है।
एक समय देश में 65-70% रक्षा सामग्री बाहर से आयात हो रही थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और हम 65% का सामान भारत से ही खरीद रहे हैं। यह बदलाव भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। एक समय वह भी था जब भारत की दुनिया भर में गिनती सबसे बड़े रक्षा सामानों के आयातक देश के रूप में होती थी। अब भारत की गिनती दुनिया के निर्यातकों में होने लगी है और अब भारत लगभग 70 देशों में रक्षा उपकरण और सामान निर्यात कर रहा है।
कृषि कानूनों के वापसी की घोषणा के बाद अब सभी की निगाहें किसान संगठनों पर टिकी हैं। आज सिंगू बॉर्डर पर आगे की रणनीति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा एक बैठक करने वाला था। अब ये देखना होगा कि बैठक में किसान संगठन क्या निर्णय लेते हैं। क्या किसान आंदोलन खत्म होगा, इसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद किसान नेताओं में और गाजीपुर बॉर्डर पर जश्न का माहौल देखने को मिला था। बताते चलें कि प्रकाश पर्व के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए तीनों कृषि बिल वापस ले लिए थे कि शायद उनकी तपस्या में ही कोई कमी रह गई थी कि वे कृषि समुदाय को नहीं मना पाए। और अब डॉलर का हाल। आज यानी शनिवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.79 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मुखिया क्रैग टाइली ने आज इस बात की पुष्टि की है कि सभी खिलाड़ी जिनमें विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविक शामिल हैं को जनवरी में होने वाले टूर्नामेंट से पहले पूर्ण टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा। श्री जोकोविक ने अपने टीकाकरण की स्थिति साफ करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे ये तय करने से पहले कि वे मेलबर्न पार्क में खेलेंगे या नहीं, वे टेनिस ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य नियमों के सामने आने का इंतजार करेंगे। श्री टाइली का कहना है कि राज्य के प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में मौजूद सभी लोगों को पूर्ण टीकाकृत होना अनिवार्य है और ये बात टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने सभी खिलाड़ियों के लिए साफ कर दी थी। और अंत में एक नज़र कल यानी रविवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल सुबह बारिश खुलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल बौछार बरसने की आशंका है। यहाँ अधिकतम तापमान 15 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल बारिश की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल बारिश की आशंका जताई जा रही है। यहां अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बारिश रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप बने रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।